करने से पहले हम भगवद गीता का महात्म्य सुन रहे हैं। ये शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि दशम अध्याय भगवद गीता का, जैसा भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी को कहा था मैं तुमको बताता हूं, और ये है आध्यात्मिक जगत में जाने की सीढ़ी है। तो काशीपुरी नाम का एक स्थान था, वहां पे एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था धीर बुद्धि, जो मुझको यानी शिव जी को वैसे ही प्रिय है जैसे नंदी प्रिय है। वो तो बड़ा शांत था और उसकी सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण के गुणगान में लगी थी। जहां कहीं भी जाता था वह बड़े प्रेम के साथ, मैं उसके संग बड़े प्रेमवश उसके पीछे चलता था। शिव जी कह रहे हैं मैं उस ब्राह्मण के पीछे चलता था ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूं और उसकी रक्षा कर सकूं। तो मेरे इस क्रियाओं को देख करके भृंगी रिद्धि नाम का एक मेरा एक शाश्वत सेवक है शिव जी का, उसने प्रश्न किया, इस ब्राह्मण ने, इस भक्त ने ऐसी क्या तपस्या करी है और ऐसे क्या पुण्य किए हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसकी सेवा कर रहे हैं। किसने प्रश्न किया, किससे? शिव जी के सेवक ने शिव जी से प्रश्न किया कि आप इसने ऐसा क्या कर दिया है कि आप इसकी इतनी सेवा कर रहे हो। तो भृंगी की प्रश्न को सुन करके मैंने उत्तर दिया कि शिव जी ने उत्तर दिया कि मैं एक बार कैलाश पर्वत पे था और पुन्नाग नाम के बाग में मैं था, और वहां बहुत सुंदर चंद्रमा की रोशनी थी, और अकस्मात वहां पे एक बहुत बड़ी आंधी आई जिसने सारे पेड़ों को गिरा दिया। कहानी फॉलो कर पा रहे हैं, शिव जी हैं बागान में हैं और आंधी आती है और गिर जाते हैं। कौन गिर जाते हैं? पेड़ गिर जाते हैं, शिव जी नहीं गिर जाते। कहानी का सूत्र फॉलो कीजिएगा पता लगा शिव जी को ही गिरा दिया, तो शिव जी नहीं गिरे, पेड़ गिरे। तो उसके बाद एक छाया वहां पे आई और ऐसा लग रहा था कि कोई पर्वत ही वहां पे आ गया हो, चल रहा हो, और उसके बाद वहां पे एक बहुत विशाल, क्या कहते हैं उसको, कैसे कैसे कह सकते हैं, बहुत विशाल पक्षी आया और उसका वह श्याम वर्ण का था, वह अपने पंख को फड़फड़ा रहा था जिस कारण से पेड़ जो है वह हिल रहे थे। अकस्मात उस पक्षी ने जमीन पे वो उतरा और शिव जी को प्रणाम किया, और उसके पास एक सुंदर सा कमल था। उसने कहा हे महादेव, आपकी जय हो, आप सभी के आश्रय हैं, आपके गुणों का कोई अंत नहीं है, आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, आप उन भक्तों की रक्षा करते हैं जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, थोड़ा कंडीशन लगा दी, और भगवान कृष्ण के भक्तों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बृहस्पति भी आपका गुणगान करते हैं, और 1000 मुख वाले अनंत शेष भी आपकी लीला का या सबके गुणों का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, तो मेरे जैसा पक्षी क्या कर सकता है जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि है। कौन बोल रहा है? वह पक्षी जो उस गार्डन में आया था जिसकी पंख की फड़फड़ाहट से वो पेड़ हिल रहे थे। तो उस पक्षी की बात को सुन करके शिव जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो? तुम देखने में तो हंस जैसे लगते हो, मतलब स्ट्रक्चर में, लेकिन तुम्हारा कलर जो है, रंग जो है, वह कौवे जैसा है, काला क्यों है? तो अब सुनिए, वो पक्षी कहता है कि मैं ब्रह्मा जी का हंस हूं। आपको पता है ना ब्रह्मा जी हंस पे चलते हैं, यस। और किस कारण से मेरा कला, मेरा शरीर का रंग जो है वो काला हो गया है, उसको मैं कथा को बताता हूं। यही पास में सौराष्ट्र स्थान है, सौराष्ट्र नाम की जगह है, सूरत जिसे कहा जाता है, और वहां पे एक बहुत सुंदर सरोवर है, और फिर उसी उसी स्थान से यह है कमल मेरे पास आया है, मैं इसे लेके आया हूं। मैं वहां पे कुछ समय के लिए गया था और वहां पे कुछ विहार कर रहा था। उसमें जैसे ही मैं उस स्थान से उड़ने के लिए उद्यत हुआ, अकस्मात मैं गिर गया और मेरा शरीर जो है वो काला हो गया। तो उस समय मैं सोचने लगा कि कैसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि मैं गिर गया और मेरा शरीर जो है वो काला हो गया। तो इस प्रकार से वो सोच रहा था तो उसने एक वाणी सुनी और जो उस सरोवर से आ रही थी, तो उन्हें कहा हे हंस, आप कृपया खड़े हो जाइए, मैं आपको बताता हूं कि किस कारण से आप गिरे और क्यों आपका जो शरीर था वो काला हो गया। मैं उठा और उस, मैं मतलब हंस, उस सरोवर के बीच में गया जहां पे 5 बड़े, मतलब मुख्य बड़े स्पेशल, स्पेशल क्या कहेंगे, अद्भुत अद्भुत कमल उगे हुए थे, और उनसे एक बहुत सुंदर अप्सरा उत्पन्न प्रकट हुई। उसको मैंने परिक्रमा किया और मेरे गिरने का कारण पूछा, तो उसने बोला, हे काले हंस, ठीक है, जब तुम उड़ रहे थे तो तुम मेरे ऊपर उड़ गए, इस कारण से, इस अपराध के कारण तुम्हारा शरीर अब काला हो गया है। जब मैंने तुमको गिरा हुआ देखा तो मैं बहुत दुखी हुई और इस कारण से मैंने तुमको बोला। क्या लिखे हैं, ओके, तो कह रहे हैं कि जब मैं, ये स्त्री बोलती है, जब मैं अपना मुख खोलती हूं तो उससे जो सुगंध निकलती है उससे 7,000 भृंग, भृंग समझते हैं भौरे, उन वह भी शुद्ध हो जाते हैं और वह स्वर्ग जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। इस प्रकार की शक्ति मेरे पास क्यों है, उसका एक कारण है। अब इस कहानी के अंदर फिर एक और कहानी कहती हैं कि इस जन्म के पहले, पिछले 3 जन्म पहले मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और मेरा नाम था सरोजवदन, और मेरे पिता ने हमेशा मुझे पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी, और जब मैं अपने पति की सेवा कर रही थी, मैं अपने पति की सेवा बहुत श्रद्धा से कर रही थी, एक दिन मैंने एक मैना को देखा और उसको देखने के कारण मेरी पति की सेवा मेरे प्रति जो है बहुत, मतलब सेवा में बाधा आ गई। तो मेरे पति ने गुस्सा होकर बोला, हे पापी स्त्री, तुम मैना बन जाओ। आप कहेंगे ये तो बड़ा खतरनाक है कि इतनी छोटी सी गलती में मैना, अच्छा कॉकरोच या कुछ बना दिया जाए तो बड़ा कठिनाई है। तो अगले जन्म में वह मैं मैना बन गई। कौन? वही अप्सरा के बारे में बता रहे हैं जो पिछले 3रे जन्म पहले वो ब्राह्मण थी, लेकिन क्योंकि उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया था इसलिए मैं एक कुछ ऋषियों के संपर्क में आई और जिन्होंने अपने आश्रम में मुझको रख लिया। वहां पे ऋषियों की एक बेटी थी जो मेरा ध्यान रखने लगी, और जब मैं वहां पे रहती थी तो मैं सुबह और शाम भगवद गीता के 10वें अध्याय का पारायण सुनती थी। पारायण मतलब सुन रहे ना, ना मेरा बोल रहा है, कोई सुन रहा है। देखिए बर्ड मतलब मैना की स्थिति है, तो बताइए अगर इंसान बोले और सुने तो कितना लाभ होगा, सोचने वाली बात। इस कारण से मैं इस जन्म में पद्मावती नाम की एक अप्सरा बनी, सॉरी इस जन्म नहीं, अगले जन्म में, 3 जन्म की बात हो रही है तो अगले जन्म में। उसके बाद एक बार मैं पुष्प विमान पर जा रही थी और मैंने देखा कि इस सरोवर में, यहां पे बात हो रही, इस सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प यानी कमल पुष्प उगे हुए हैं। मैं वहां पे आई और वहां पे जल क्रीड़ा करने लगी, तो उसी समय दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने मुझे निर्वस्त्र देखा तो मैं घबरा गई और तुरंत ही इन 5 कमल पुष्पों के रूप धारण कर लिया। तो दुर्वासा मुनि की आंखों से एकदम अग्नि निकल रही थी और कहा, हे पापी स्त्री, तुम यहां पे 100 साल तक रहोगी, इस प्रकार से कमल पुष्प के रूप में, और इस प्रकार से मुझे श्राप देकर कि वह तुरंत ही चले गए। लेकिन भाग्य से मुझे ये 10वां अध्याय भगवद गीता का याद रहा, जो हमको याद नहीं है लेकिन उस अप्सरा को याद था, और आज मैं उस शाप से मुक्त हूं। और क्योंकि तुम मुझे, मुझ पे मतलब क्या कह सकते हैं, क्रॉस ओवर क्या कहेंगे, मेरे ऊपर से उड़ गए थे, इस कारण से तुम जमीन पे गिर गए हो, तुम काले हो गए। लेकिन अगर तुम भगवद गीता के 10वें अध्याय को पढ़ते हो तो तुम भी अपनी इस स्थिति से मुक्त हो जाओगे। तो पद्मावती ने फिर 10वां अध्याय भगवद्गीता का पारायण किया और वैकुंठ से विमान आया, उनको ले गया। इसलिए हम पारायण नहीं करेंगे, पता लगा आप में से कुछ लोग वैकुंठ चले गए भी तो दिक्कत होगी। और उसके बाद मैं उन कमल पुष्पों को लेकर के आपके पास आया हूं। अभी कौन बोल रहा है? वो जो हंस हंस बोल रहा है शिव जी को। तो फिर शिव जी ने कहा कि जैसे ही उस काले हंस ने ये सारी कथा बताई, तुरंत ही उसने वह शरीर त्याग दिया और एक ब्राह्मण के घर में वह धीर बुद्धि के नाम पर के रूप में पैदा हुआ, और बचपन से ही वह 10वां अध्याय भगवद गीता को बोलता था। समझ में आया किसने जन्म लिया था? हंस ने, ठीक है। और जो कोई भी भगवद गीता के दशमाध्याय के को श्रवण करता है, उच्चारण करता है, तो वह भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भगवद गीता के श्लोकों को सुनता है दशमाध्याय के, चाहे वह बहुत पतित हो, चाहे वह सोमरस पिपासु क्या बोला जाएगा, समझ गए ना, शराबी हो, यहां तक कि ब्राह्मण की हत्या भी क्यों ना किया हो, वह भी भगवान विष्णु के दर्शन को प्राप्त करेगा। इस कारण से ये भृंगृदि, इस कारण से हे भृंगृदि, ये धीर बुद्धि मुझे बहुत प्रिय है। हे मेरी प्रिय पार्वती, कौन बोल रहा है? शिव जी। कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, अगर वह दशम अध्याय भगवद गीता का पारायण करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम आज भगवद गीता को दशम अध्याय को शुरू करेंगे।